पेज नंबर 84 से 85। मूढ़ मनुज यह भी न जानता तू ही स्वयं प्रकृति है, फिर अपने से आप भाग कर कहाँ प्राण पाएगा। सब है शून्य, कहीं कोई निश्चित आकार नहीं है, क्षण क्षण सब कुछ बदल रहा है परिवर्तन के क्रम में। धूम योनि ही नहीं ठोस यह पर्वत भी छाया है, यह भी कभी शून्य अंबर था और अचेत अभी भी। नए नए आकारों में क्षण क्षण यह समा रहा है, क्या कभी मिल ही जाए क्या पता अनंत गगन में। शब्दार्थ प्राण यानी रक्षा, धूम योनि यानी धुएं का समूह। प्रसंग उपरिक्त प्रसंग का विस्तार करते हुए कवि परिवर्तनशील संसार के उस सूक्ष्म रहस्य को उद्घाटित करता है कि जिसके अनुसार समग्र ठोस पदार्थ भी शून्य निराकार तथा छायामय है। फिर मनुष्य जो स्वयं प्रकृति का रूप है उसकी सत्ता से बचकर कहाँ प्राण पाएगा, कहाँ जाएगा। व्याख्या और वह मूढ़ मनुष्य जो प्रकृति से बचकर भागना चाहता है उसे कहाँ आश्रय मिलेगा, यह सब कुछ शून्य है। यहाँ किसी पदार्थ का निश्चित रूप नहीं है, परिवर्तन की लीला से क्षण भर में सब कुछ बदल जाता है। धूम्रजाल ही क्यों, यह ठोस पर्वत की छाया ही है। यह भी कभी शून्य आकाश के रूप में था और अब भी यह चेतना शून्य प्रतिक्षण नए रूपों में समाता जा रहा है, क्या पता अनंत आकाश में मिलकर वह फिर अरूप हो जाए। विशेष ऊपर के पद में कवि ने उपनिषदों के उस महान रहस्य को सुंदर तथा भावमय शब्दावली में व्यक्त किया है जिसके अनुसार यह संसार शून्य से प्रारंभ होकर शून्य की ही ओर अग्रसर हो रहा है। यह परिवर्तन ही विनाश है, तो फिर नश्वरता से भिन्न मुक्ति कुछ नहीं, किंतु परिवर्तन नाश नहीं है। परिवर्तन प्रक्रिया प्रकृति ही की सहज प्राण धारा है। मुक्त वही जो सहज भावना से इसमें बहते हैं, विधि निषेध से परे छूट कर सभी कामनाओं से, किसी ध्येय के लिए नहीं केवल बहते रहने को, क्योंकि कुछ भी करना संभव या योग्य नहीं है। शब्दार्थ प्रक्रिया यानी गति रचना विधि, सहज यानी स्वाभाविक। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में परिवर्तन को प्रकृति का स्वभाव कहकर उसमें मनुष्य को सहज भाव से बहने की प्रेरणा दी गई है। व्याख्या यह परिवर्तन यदि विनाश है तो फिर मृत्यु से भिन्न किसी और वस्तु का नाम मुक्ति नहीं है। पर परिवर्तन नाश नहीं है, यह तो प्रकृति की स्वाभाविक गति है तथा उसके प्राणों की स्वच्छंद धारा है, और इस धारा में सहज भाव से बहने वाला पुरुष मुक्त है जो नियम उपनियमों से दूर होकर सभी कामनाओं को छोड़ बिना किसी निश्चित ध्येय से बहता रहता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त न तो और कुछ करना संभव है और न ही उचित। जाने क्यों तैराक चतुर तब भी प्रशांत धारा में चला चला कर हाथ पांव विक्षोभ व्यर्थ भरते हैं, कौन सिद्धि है जो मिलती संतरण दक्ष साधक को और नहीं मिलती अकाम जल में बहने वाले को। शब्दार्थ विक्षोभ यानी दुख आह, संतरण दक्ष यानी तैरने में कुशल। व्याख्या फिर भी चतुर तैराक गहन शांत झाला जलधारा में न जाने क्यों आहें भरकर अपने हाथ पांव मारते रहते हैं, भला कौन सी ऐसी सिद्धि है जो उस कुशल तैराक को मिल जाती है और निष्काम होकर जल में बहने वाले साधक को नहीं मिलती। जिसे खोजता फिरता है तू वह अरूप अनिकेतन, किसी व्योम पर कहीं देह घर बैठा नहीं मिलेगा। वह तो स्वयं रहा वह अपनी ही लीला धारा में करदम कहीं कहीं पंकज बन कहीं स्वच्छ जल बनकर। उसे देखना हो तो आँखों को पहले समझा दे, श्वेत श्याम एक ही रंग की युगपत संज्ञाएं हैं, और उसे छूना हो तो कह दे अपने हाथों से ढेर उठा दे शूल फूल का कमल और करदम का। शब्दार्थ अरूप यानी निराकार रूपहीन, अनिकेतन यानी भवन रहित, आवास यानी रह आवास रहित जो हो, व्योम यानी आकाश, करदम यानी कीचड़, युगपद यानी दोनों। व्याख्या तू जिसे अंतरिक्ष की तहों में खोजता फिरता है वह निराकार निरावास किसी आकाश पर देह धारण कर बैठा नहीं मिलेगा, वह तो स्वयं अपनी लीला की धारा में बह रहा है, कहीं कीचड़ कहीं कमल और कहीं स्वच्छ जल का रूप उसी ने धारण किया है। उसे देखना हो तो अपनी आँखों को समझा दे कि श्वेत और श्याम एक ही रंग के दो नाम हैं, तू यदि उसे छूना चाहे तो हाथों से कह दे कि तू फूल कांटे तथा कीचड़ कमल का भेद भुला दे। अर्थ खोजते हो जीवन का, लड़ी कार्य कारण की बहुत दूर तक बिछी हुई है पीछे अंधियाले में, चलो जहाँ तक ही अतीत गहवर में चरण चरण पर मात प्रतीक्षांजत प्रश्न मग्ने मिलते जाएंगे और अंत में अनाख्य जो आदि भित्ति आती है परे झांकने को भी उसमें कहीं गवाक्ष नहीं है। शब्दार्थ अतीत गहवर यानी विगत भूत की गुफा, प्रतीक्षा निगत यानी इंतजार में डूबा हुआ, अनाख्य यानी अकथनीय अवर्णनीय, गवाक्ष यानी वायतायन झरोखा। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में जीवन के सत्य को अत्यंत रहस्यमय एवं अकथनीय कहा गया है। व्याख्या, जीवन का सत्य प्राप्त करना सहज नहीं है। कार्य और कारण की लड़ी गहन अंधकार में पीछे तक छिपी हुई है। अतीत की गंभीर गुफा में जहाँ तक ही जाओगे वहाँ तक पग पग पर प्रतीक्षा में टेक लगाए जिज्ञासु प्रश्न मार्ग में मिलते जाएंगे और अंत में रहस्य की वह अकथनीय तथा वर्णनातीत दीवार खड़ी होगी जिसमें झांकने को भी कोई झरोखा नहीं है, अर्थात रहस्योद्घाटन की एक ही किरण का जिसमें प्रवेश नहीं है। विशेष, भारतीय दर्शन पद्धति में सत्य को, धर्म को तथा ब्रह्म को वर्णनातीत की संज्ञा दी गई है। वेदों में कहा गया है कि सत्य के पात्र का मुंह ऐसे महान ढकने से ढका है जिसे हटाना सर्वथा असंभव है। महाभारत में भी सत्य के तत्व को गहन गुफा में निहित बताया गया है, तथा सत्यस्य तत्त्वं निहित गुहायां महाभारत। वर्तमान की कुछ मत पूछो, एक बूंद वह जल है अभी हाथ आया तुरंत फिर अभी बिखर जाएगा। पढ़ा जाए क्या अर्थ काल के इस उड़ते अक्षर का, और भविष्य के वन में ऐसा घनघोर तिमिर है नहीं सूझता पंथ बुद्ध के दीपों की आभा में, हार मान प्रज्ञा अपना सिर थाम बैठ जाती है। व्याख्या, वर्तमान जल के उस बूंद के समान है जो हाथ में आकर तुरंत बिखर जाती है। काल के इस उड़ते अक्षर का अर्थ कौन बांट सकता है, अर्थात वर्तमान को सतत गतिशील है, किसी की पकड़ में आ पाता है। भविष्य के बीहड़ जंगल में ऐसा नीर अंधकार छाया है कि बुद्धि के दीपकों के प्रकाश में ही मार्ग नहीं सूझता। प्रज्ञा यानी विवेकशील बुद्धि विवश हो हार मानकर अपना सिर थाम लेती है। वृथा यत्न इस अतल शून्य का तल स्पर्श करने का, वृथा यत्न पढ़ने का कोई भेद उस पर जाकर, कहीं न कोई द्वार न तो वातायन कहीं खुले हैं हमें, हम हैं जहाँ वहाँ जाने की कोई राह नहीं है। शब्दार्थ अतल यानी तल रहित, तल स्पर्श यानी तल में पैठना, उत्स यानी झरना, वातायन यानी झरोखा। व्याख्या, आकाश के अतल विस्तार की सीमा खोजना व्यर्थ का प्रयत्न है, निर्झर के झरझर निनाद में किसी भेद को खोजने का यत्न सारहीन है। इस सत्य के रहस्य का न कोई द्वार है और न कोई झरोखा ही खुला है जिससे कुछ भेद लग सके। हम जिस जगत पर खड़े हैं वहाँ जाने की कोई राह है ही नहीं, अर्थात जीवन अर्थ तक पहुँचना किसी मार्ग से भी संभव नहीं है। किंतु अर्थ को छोड़ जब ही शब्दों की ओर मुड़ोगे अकस्मात यह शून्य ठोस रूपों से भर जाएगा। देखोगे सुनसान नहीं, यह तो पूरी बस्ती है, नक्षत्रों की, नीलगगन की, शैलों सरिताओं की, लतापात्र की, हरियाली की, उषा की, लाली की, सभी पूर्ण, सब सुखासीन, सबके सब लीन क्रिया में, पूछो किससे कौन कहाँ से सृष्टि निकल आई है। शब्दार्थ शैलों यानी पर्वतों, सुखासीन या सुख में निमग्न, लीन यानी लगे हुए, क्रिया यानी कर्म। व्याख्या, किंतु जीवन के सत्य की गहनता को छोड़कर जब तुम केवल बाहरी आवरण पर ध्यान दोगे सहसा ये रहस्यमय शून्य विविध साकार रूपेण उपायित हो उठेगा। तब तुम देखोगे कि यह विश्व शून्य नहीं अपितु नक्षत्रों, नीले आकाश, नदियों, पर्वतों, लता पत्रों, हरितिमा तथा मोर की लालिमा से भरा हुआ है और इसके सभी तत्व सुखों में सिमटे हुए अपने अपने कर्मों में लीन हैं। फिर यहाँ किसी को किसी से यह पूछने का अवकाश ही नहीं कि यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हो गई। अच्छा है ए पेड़ पुष्प इसके जिज्ञास नहीं है, हम हैं कौन कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे। सच में यह प्रत्यक्ष जगत कुछ उतना कठिन नहीं है जितना हो जाता द्रोह मन के भीतर जाने पर, वैचारिक जितना विषण रहता द्रोहताओं से उतना खिन्न नहीं रहता है सहज मनुष्य प्रकृति का। शब्दार्थ जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा वाला, ज्ञान विपासन, द्रोह यानी दुर्गम कठिन, वैचारिक यानी विचारक चिंतक दार्शनिक, विषण यानी दुखी खिन्न। व्याख्या, पेड़ तथा पुष्प आदि को वह जानने की जिज्ञासा नहीं है कि वे कौन हैं, कहाँ से आए हैं और उसका अंत कहाँ है। इस दृष्टि से वे मानव से अच्छी स्थिति में हैं क्योंकि उन्हें चिंतन के कठोर पाश में उलझ कर बेचैन नहीं होना पाता। वास्तव में यह प्रत्यक्ष जगत उतना कठोर एवं उलझा हुआ नहीं है जितना मन के भीतर घुस जाने पर जटिल हो जाता है। एक चिंतक इन कठोर चिंताओं से जितना दुखित रहता है उतना सामान्य प्रकृति का पुरुष विषण नहीं होता। विशेष वस्तुतः चिंतनशील प्राणियों की अपेक्षा सामान्य प्रकृति के जीव सुखी होते हैं। एक दार्शनिक के लिए संसार रहस्य है, उलझन है, किंतु साधारण प्राणी के लिए तो वह नाम रूपों से सुख और सौंदर्य का अखिल भंडार है। द्वंद्व रंच भर नहीं कहीं भी प्रकृति और ईश्वर में। द्वंद्वों का आभास द्वैतमय मानस की रचना है। यह आभास नहीं टिकता जब मनुष्य जान लेता है अप्रयास अनुभवन प्रकृति का सहज रीत जीवन की, क्योंकि प्रकृति और पुरुष एक है, कोई भेद नहीं। जो भी है अवसर निसर्ग के ईश्वर के भी क्षण है। धर्म साधना कहीं प्रकृति से भिन्न नहीं चलती है। दृश्य अदृश्य एक है दोनों। प्रकृति और ईश्वर में भेद गुणों का नहीं, भेद है मात्र दृष्टि का, मन का, और यहाँ यह काम धर्म ही उज्ज्वल उदाहरण है। शब्दार्थ द्वंद्व यानी विरोध, द्वैत यानी द्वि, आभास यानी प्रतीत, द्वैतमय यानी दुविधा युक्त, मानस यानी मन हृदय, अप्रयास यानी सहज स्वाभाविक, अनुभवन यानी अनुभव अनुभूति, निसर्ग यानी प्रकृति, प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति और ईश्वर में अभिन्नता का भाव प्रदर्शित किया है। द्वंद्व तो केवल मन का है, प्रकृति और ईश्वर दोनों परस्पर अवच्छिन्न है। व्याख्या ईश्वर और प्रकृति में कहीं भी राई भर विरोध नहीं है। विरोध की यह प्रतीत केवल दुविधा में मन के द्वारा होती है। जब मनुष्य प्रकृति के स्वाभाविक अनुभव को, प्रक्रिया को तथा जीवन की सहज गति जान लेता है तब यह द्वैत की प्रतीति मिट जाती है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। प्रकृति की गति के जो विशेष अवसर हैं वे ही ईश्वर की सत्ता के सुंदर क्षण हैं। धर्म साधना ही प्रकृति का आधार लेकर चलती है। साकार प्रकृति या निराकार ईश्वर ये दोनों एक ही हैं, इनमें गुणों का भेद नहीं। भेद है तो केवल देखने वालों की दृष्टि तथा मन का है, और यह कामाभिभूति धर्म ही इसका उज्ज्वल उदाहरण है। काम धर्म काम ही पाप है। काम किसी मानव को उच्च लोक से गिराहीन पशु जंतु बना देता है, और किसी मन में असीम सुषमा की कृपा जगाकर पहुंचा देता उसे क्रम सेवित उच्च शिखर पर। शब्दार्थ असीम यानी सीमा रहित, सुषमा यानी सौंदर्य, तृषा यानी पिपासा। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने काम के ऊर्ध्वगामी तथा अधोगामी दोनों ही रूपों की चर्चा की है। व्याख्या काम ही धर्म है तथा काम ही पाप है। काम किसी मनुष्य को तो उच्च लोकों से गिराकर हीन पशुओं जैसा बना देता है, और किसी के मन में अनंत सौंदर्य की प्यास जगाकर स्वर्णिम किरणों से मंडित उन्नति के उत्तुंग शिखर पर पहुंचा देता है। विशेष काम से तात्पर्य मानव मन की उस स्फूर्ति से है जो मनुष्य की चेतना से लिपट कर उसे कोई कार्य करने की प्रेरणा देती है। यह विरोध क्या है? कैसे दो फल एक ही क्रिया के एक अपर से इस प्रकार प्रतिकूल हुआ करते हैं? सोचा है यह प्रेम कहीं क्यों दानव बन जाता है और कहीं क्यों जाकर मिल जाता रहस्य चिंतन से? शब्दार्थ अपर यानी दूसरा, दानव यानी राक्षस। व्याख्या काम की एक ही भावना में फिर विरोध क्यों है? एक ही कर्म के दो फल एक दूसरे के विरोधी कैसे बन जाते हैं? क्या तुमने कभी यह सोचा है यह प्रेम कहीं तो राक्षस क्यों बन जाता है और कहीं क्यों रहस्य के चिंतन में लीन हो जाता है? काम नहीं इस वैपरीत्य का भी मन ही कारण है। मन जब हो आसक्त काम से लब्ध अनेक सुखों पर, चिंतन में भी उन्हीं सुखों की स्मृति धोए फिरता है। विकल व्यग्र फिर रसमधुमे अवगाहन करने को स्नेहाकृष्ट नहीं तो यत्नों से, छल से, बल से भी, तभी काम से बलात्कार के पाप जन्म लेते हैं। तभी काम दुर्धर्ष दानवी किलविष बन जाता है। काम कृत वे सभी दुष्ट हैं जिनके संपादन में मन आत्माएं नहीं मात्र दो वपुस मिला करते हैं। यातन जहां विरुद्ध प्रकृति के विवश किया जाता है, सुख पाने को क्षुधा नहीं केवल मन की लिप्सा से। जहां नहीं मिलते नर नारी उस सहजाकर्षण से, जैसे दो बीचियां अनामंत्रित आ मिल जाती हैं पर स्वर्ण की लोलुपता में छिपे छिपे तस्कर से एक दूसरे का आकुल संधान किया करती हैं। वैपरीत्य यानी विरोध, आसक्त यानी अनुरक्त, लब्ध यानी प्राप्त, स्मृति यानी याद, विकल यानी दुखित, व्यग्र यानी बेचैन, मधुरस यानी अमृत का सरोवर, अवगाहन यानी स्नान, स्नेहाकृष्ट यानी प्रेम से आकर्षित, बलात्कार यानी जबरन जबरदस्ती, दुर्धर्ष यानी भयंकर कठोर, किलविश यानी पाप, कृत्य यानी कार्य, संपादन यानी संग्रह, वपुस यानी शरीर, लिप्सा यानी लालसा, सहज आकर्षण यानी स्वाभाविक अनुरक्ति, वीचियाँ यानी लहरें, अनामंत्रित यानी बिना बुलाए, सवर्ण यानी अच्छे वर्ण वाला सुंदर, लोलुपता यानी लालच, तस्कर यानी चोर, संधान यानी खोज। व्याख्या: इन विरोधी भावनाओं का कारण भी काम नहीं, मन ही है। मन जब किसी पर अनुरक्त होकर कामुकता से प्राप्त किए जाने वाले अनेक सुखों की चिंता में लगा उन्हीं सुखों को याद किए जाता है तथा दुखित एवं बेचैन होकर सुंदरता के सर में बार बार डूबने के लिए प्रेमानुरक्ति से विहीन भी केवल कामेच्छा को पूर्ण करने के लिए यत्नों से छल या बल से बलात्कार कर बैठता है तथा यह पापों के जन्म का कारण बनता है। ऐसी अवस्था में यह काम अत्यंत भयंकर राक्षसी वृत्तियों से पूर्ण जघन्यहीनता का कारण बनता है। कामेच्छा से प्रेरित वे सभी कार्य निंदित हैं जिनकी पूर्ति में मन तथा आत्मा को छोड़कर केवल दो शरीर मिलते हैं, या जहाँ शरीर को सहज प्रकृति के विपरीत सुख पाने की भूख से मन की वासना के कारण विवश किया जाता है, जहाँ स्त्री पुरुष उस स्वाभाविक आकर्षण से परस्पर नहीं मिलते जिससे दो लहर अपने आप आकर मिल जाया करती हैं, अपितु जहाँ मन धन के लालची चोर की तरह छिप छिप कर व्याकुल हुए एक दूसरे को केवल वासना की प्यास बुझाने के लिए ढूंढा करते हैं। तन का क्या अपराध, यंत्र वह तो सुकुमार प्रकृति का, सीमित उसकी शक्ति और सीमित आवश्यकता है। यह तो मन ही है निवास जिसमें समस्त विपदों का, वही व्यग्र व्याकुल असीम अपनी काल्पनिक क्षुधा से हाँक हाँक तन को उस जल को मलिन बना देता है। बिंबित होती किरण अगोचर की जिस स्वच्छ सलिल में, जिस पवित्र जल में समाधि के सहस्रार खिलते हैं। तन का काम अमृत लेकिन यह मन का काम गरल है। शब्दार्थ: विपदों यानी दुखों, विपदाओं, अगोचर यानी अगम, सलिल यानी जल, सहस्रार यानी कमल, गरल यानी विश्व। व्याख्या: किंतु इसमें शरीर का क्या दोष, यह तो बेचारा प्रकृति का एक कोमल यंत्र मात्र है, उनकी शक्तियाँ तथा आवश्यकताएँ भी अत्यंत सीमित हैं। असल में तो यह मन ही है जिसमें सारी विपदाएँ निवास करती हैं, वही व्याकुल तथा उद्विग्न होकर अपनी कल्पना को अनन्य भूख से शरीर को हाँक कर उस स्वच्छ जल को अपवित्र बना देता है जिसमें उस अगम ज्योति की किरणें प्रतिबिंबित होती हैं तथा समाधि के सहस्र दल कमल विकसित होते हैं। शरीर की कामना तो अमृतमय है लेकिन यह मन के भीतर का काम है जो सर्वत्र जहर बिखेर देता है। फलाशक्ति दूषित कर देती जो समस्त कर्मों को, उसी भांति वह काम कृत्य भी दूषित और मलिन है। स्वतः स्फूर्त जो नहीं ध्येय जिसका मानसिक क्षुधा का सप्रयास है शमन, जहाँ पर सुख सुख खोजा जाता है तन की प्रकृति नहीं, मन की माया से प्रेरित होकर जहाँ जागकर स्वयं नहीं बहती चेतना उरों की, मन की लिप्सा के अधीन उसको जगना पड़ता है। या जब रसावेश की स्थिति में किसी भांति जाने को मन शरीर के यंत्रों को बरबस चालित करता है। शब्दार्थ: फलाशक्ति यानी फल की चाह, स्वतः स्फूर्त यानी अपने आप फूटने बहने वाला, शमन यानी शांति, रसावेश यानी रस का आवेश। व्याख्या: फल की कामना जिस प्रकार सारे कर्मों को दूषित कर देती है उसी प्रकार वह काम का कार्य भी दूषित और हेय है जो सहज स्फूर्त नहीं होता, जिसका ध्येय मन की भूख को संयत्न श्राप्त करना है तथा जहाँ पर शरीर की सहज प्रवृत्ति से नहीं अपितु मन की दूषित माया से प्रेरित होकर सुख की खोज करता है, जहाँ हृदय की चेतना जागृत होकर स्वयं नहीं बहती अपितु मन की लिप्सा से वशीभूत होकर उसे जागना पड़ता है, अथवा जब मन रस की चरम स्थिति में जाने के लिए बलपूर्वक शरीर के यंत्रों का संचालन करता है। किंतु कभी क्या रसावेश में कोई जा सकता है बिना सहज एकाग्रवृत्त के मात्र हाँक कर तन को? मांसपेशियां नहीं जानती आनंदों के रस को, उसे जानती स्नायु भोगता उसे हमारा मन है। इसीलिए निष्काम काम सुख यह स्वर्गीय पुलक है, सपने में भी नहीं स्वल्प जिस पर अधिकार किसी का, नहीं साध्य वह तन के आस्फालन या संकोचन से, वह तो आता अनायास जैसे बूंदे स्वाति की आ गिरती हैं अकस्मात सीपी के खुले हृदय में, लिया दिया वह नहीं मात्र वह ग्रहण किया जाता है। शब्दार्थ: एकाग्र वृत्ति यानी एकांत चित्त, मांसपेशियां यानी शरीर का उभार, पुलक यानी रोमांच, स्नायु यानी नसें, स्वल्प यानी थोड़ा, आस्फालन यानी विस्तार, संकोचन यानी संकोच, अनायास यानी बिना किसी परिश्रम के, अकस्मात यानी अचानक। व्याख्या। लेकिन क्या कभी कोई रस की परम स्थिति में बिना एकाग्रचित के केवल शरीर को हांक सकता है? बाहर की उभरी हुई मांसपेशियां आनंद के रस को नहीं जानती, उसे तो हमारी भीतर की नसें जानती हैं और मन उसका भोजन करता है। इसीलिए कामना रहित कामजन्य सुख वह स्वर्गिक रोमांच है, इस पर स्वप्न में भी किसी कारण मात्र भी अधिकार नहीं हो सकता। वह शरीर के विस्तार एवं संकोच से साध्य नहीं है, अपितु अनायास उसी प्रकार स्वभावतः प्रकट होता है जिस प्रकार स्वाति की बूंद सीपी के खुले हृदय में आ गिरती है। उस काम सुख में लेने देने का व्यापार नहीं चलता, वह तो सहज ही केवल मात्र ग्रहण किया जाता है। और पुत्र कामना कहो तो यद्यपि वह सुखकर है, पर निष्काम काम का सचमुच वह भी ध्येय नहीं है। निरुद्देश निष्काम काम सुख की अचेत धारा में संताने अज्ञात लोक से आकर खिल जाती हैं। वारिवल्लरी में फूलों सी निराकार के गृह से स्वयं निकल पड़ने वाली जीवन की प्रतिमाओं सी। शब्दार्थ वारिवल्लरी यानी जल लताएं, प्रतिमाओं यानी मूर्तियां। व्याख्या। और यद्यपि पुत्र की कामना यदि वह काम सुख का उद्देश्य है तो सुखकर है, पर निष्काम काम का वास्तव में मूल ध्येय नहीं है। उद्देश्यहीन काम रहित काम सुख की चेतना की धार में संतानें अनजाने लोक में उसी प्रकार आकर खिल जाती हैं जिस प्रकार जललताओं में फूल खिलते हैं, तथा निराकार सत्ता के घर से जीवन की मूर्तियां स्वयं निकल पड़ती हैं। विशेष उपरुक्त दोनों प्रसंगों में निष्काम काम में विरोधाभास की प्रतीति है। प्रकृति नित्य आनंदमयी है, जब भी भूल स्वयं को हम शरीर के किसी रूप नारी नर या फूलों से एक तान होकर खो जाते हैं, समाधि में स्थल में खुल जाता है कमल धार, मधु की बहने लगती है, दैहिक जग को छोड़ कहीं हम और पहुंच जाते हैं, मानो मायावरण एक क्षण मन से उतर गया है। शब्दार्थ एक तान यानी एकाग्र, निस्तल यानी गहनता, मायावरण यानी माया का पर्दा। व्याख्या। प्रकृति सदैव शाश्वत आनंदमयी है, जब कभी हम अपने आप को भूलकर प्रकृति के किसी रूप में एकाग्र हो विलीन होकर गहन समाधि में डूब जाते हैं तो हमारे हृदय के कमल खिल उठते हैं, अमृत की धार बहने लगती है, तथा हम इस भौतिक विश्व को छोड़कर चेतना के किसी और ही लोक में पहुंच जाते हैं, तो एक क्षण के लिए ऐसा लगता है मानो मन के ऊपर से माया का आवरण हट गया हो। क्या प्रतीक यह नहीं काम सुख गर्भित ग्राम में नहीं है? वह भी ले जाता मनुष्य को ऊपर मुक्त दिशा में, मन के माया मोह बंध को छुड़ा सहज पद्धति से, पर खोजें क्यों मुक्ति? प्रकृति के हम प्रसन्न अवयव हैं, जब तक शेष प्रकृति तब तक हम भी बहते जाएंगे लीलामय की सहज शांत आनंदमयी धारा में। शब्दार्थ प्रतीक यानी चिन्ह, गर्हित यानी निंदित, ग्राम यानी अशिष्ट, पद्धति यानी तरीका, अवयव यानी अंग। व्याख्या। क्या काम सुख जबकि वह निंदित और अशिष्ट न हो माया का प्रतीक नहीं है? यह भी तो मनुष्य को स्वाभाविक पद्धति से ऊपर उठाकर मन के माया मोह के बंधनों को छोड़कर मुक्ति की दिशा में ले जाता है, किंतु हम तो प्रकृति के प्रसन्न अंग हैं, फिर मुक्ति की खोज क्यों करें? जब तक प्रकृति शेष है तब तक हम भी लीलामय की आनंदमय शांति तथा स्वाभाविक धारा में बहते जाएंगे।